सोमवार के इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग रेगुलरली आते हैं सोमवार को या कोई नए भी हैं आज पहली बार आए? ओ काफी सारे आप पहली बार आए, आप तो माला कर रहे हैं। अच्छा तो पिछले सोमवार आए थे सब, क्लास हुई थी तो पिछले सोमवार क्या पढ़ा था? तुलसी जी, तुलसी शालिग्राम विवाह के बारे में, तुलसी जी के बारे में। और उससे पिछले सोमवार फंक्शन था, तो क्या पढ़ा था? 7.2 में क्या पढ़ा था? अभी मैं पूछूंगा उससे पिछले मतलब उस सोमवार को कौन कौन आया था, सबके हाथ नहीं, किसी के हाथ नहीं उठने वाला अभी। 7.1 में क्या पढ़ा था, 7.2 में क्या नहीं याद? भाई आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और घर आके कहें कि हमने कुछ होमवर्क नहीं करना, स्कूल में क्या पढ़ाया गया हमने नहीं पढ़ाई करनी, तो आप खुश होंगे कि? और टीचर भी पूछे क्या पढ़ा था, नहीं याद नहीं है। तो पढ़ना चाहिए भाई जाके कि नहीं, कम से कम इतना भी याद है 7.2 था। और कुछ नहीं था। किसी को पता है कि क्या टॉपिक क्या चल रहा है भगवद गीता में? चलो 7.2 में नहीं पता, वो वैसे क्या चल रहा है आपसे? आप कोई हाँ नहीं बोलने वाला वैसे। तो सातवां अध्याय जो है, अच्छा भगवद गीता जो है इसमें 18 अध्याय हैं, तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहले छह अध्याय, फिर बीच के छह अध्याय, फिर आखिरी के छह अध्याय। तो पहले छह अध्याय हैं कर्मयोग के बारे में और आखिरी के छह अध्याय हैं ज्ञान योग। बीच के जो छह अध्याय हैं जो कि सातवें अध्याय से शुरू होता है भक्ति योग के बारे में, जो अभी सातवें अध्याय से शुरू हो रहा है भक्ति के बारे में, तो हल्का हल्का भगवान बताएंगे। अभी शुरुआत में है तो अभी भी थोड़ा सा कर्मयोग के बारे में बताएंगे हल्का सा, और फिर जो नौवां अध्याय है उसमें भक्ति योग के बारे में, बारहवां अध्याय तो पूरा ही भक्ति योगी है और कुछ है ही नहीं उसमें। तो भगवान एक थीम लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी बोल दिया। हम लोग ही नहीं कहीं से कुछ भी बोलते, और जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोल रहे हैं तो वो कुछ सीक्वेंस में कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे। जैसे छठा अध्याय सबको याद है क्या था टॉपिक, क्या मतलब शीर्षक क्या था, टाइटल क्या था उसका? सिक्स चैप्टर, किसी को याद है? ध्यान योग। तो छठा अध्याय था ध्यान योग। तो ध्यान योग के बारे में जब भगवान ने अर्जुन को बताया कि ध्यान योग किस तरह किया जा सकता है, और फिर अर्जुन कहते हैं ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, एक प्रचंड वायु को रोकने से भी ज्यादा मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, तो फिर भगवान बताते हैं ठीक है तपस्या और अभ्यास से और वैराग्य से इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। पर छठे अध्याय के एंड में आके भगवान कहते हैं कि सब योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, जो अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वही सब में सर्वोच्च है। तो भगवान कह रहे हैं फाइनली योग के अंत में भी, ध्यान योग के अंत में भी, कि भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। तो सिक्स चैप्टर यहां खत्म करते हैं और फिर सातवां अध्याय शुरू होता है। भगवान कहते हैं कि हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करते करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। बच्चों का नीचे लाइब्रेरी में नहीं होता क्या आजकल? ऑर्गेनाइजर्स कोई नहीं? समर कैंप अभी चल रहा है, वो तो दिन में हो गया था। तो सातवें अध्याय में शुरुआत में भगवान कहते हैं, और ये जो सातवें अध्याय का जो पहला श्लोक है, मयासक मनपार्थ योगम युंजम मदाश्रय संशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्श्रणु। ये श्लोक, इस पर श्रील प्रभुपाद जी ने जैसे दूसरे अध्याय के एक श्लोक पे सबसे ज्यादा लेक्चर्स दिए, और इस श्लोक पे दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा लेक्चर्स इस श्लोक पे दिए। और किसने बताया है कि मैं आसक्त बना, अपना मन मेरे में आसक्त करो, और इस तरह जो है योगम युंजन मादाश्य पूर्णतः योग में स्थित होके असंशय समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तत्श्रणु, किस तरह बिना संशय के मेरे को जान सकते हो ये सुनो। भगवान को जानने का क्या फायदा होता है? भगवान को पूरी तरह से अगर हम जान जाए तो उसका क्या फायदा है? ओके, गीता के हिसाब से नहीं भी पता फिर भी कुछ तो गेस कर सकते हैं, है जी? प्रीति बढ़ेगी और मेंटेन रिलेशनशिप, ओके, और प्योरिटी आएगी और ओके, और किससे छुटकारा मिलेगा? जन्म मृत्यु से। भगवान कहते हैं गीता के चौथे अध्याय में, जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं युवेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति माम एति स्वर्जना। मेरे और जन्म की लीलाओं को जो तत्व से जान लेता है, तो भगवान के बारे में जानना इसलिए बहुत जरूरी है, और तत्व से जानना, ट्रुथ से, सत्यता से, उनको एकदम पक्के तरीके से जानना, उससे क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, अपना जब शरीर छोड़ेंगे तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, नेति माम एति, और फिर मेरे पास आओगे सो अर्जुना, अर्जुन तुम ये जान लो। ये है फायदा भगवान को जानने का। बाकी हम बहुत कुछ चीजों के बारे में जिज्ञासा करते रहते हैं पूरे अपनी पूरी लाइफ में, कि आईपीएल में क्या हुआ, दिल्ली हार रहे कि जीत रहे, जीत रहे, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फिल्मों में क्या हो रहा है, इस सब के बारे में हम जिज्ञासा करते रहते हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, बिजनेस में क्या हो रहा है, किस चीज का भाव ऊपर है नीचे है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, ये सब तो जानने की कोशिश करते रहते हैं। पर इसलिए फोन भी बजता है जानने के लिए। भगवान तो फोन नहीं कर रहे होंगे। देखो, फोन अपने साइलेंट पर लगा दें कुछ देर के लिए तो अच्छा होगा भाई। हमारे पास कुछ और खाली सीट्स हैं, अगर आप ऊपर बैठना चाहें, काफी सारी सीट्स खाली हैं। अच्छा, और पीछे सबके पास छोटे बेबी हैं। अरे वाह, कंफर्म है भाई, कंफर्म है, आप भी हो। आना तो माइक पे आके बोलो वही जो बोलो। तो ये है भगवान को जानने का फायदा। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे को तुम तत्व से जान लोगे, क्योंकि बाकी जो टेम्परेरी चीजें हैं उनको जानने के लिए तो हम बहुत समय खराब करते रहते हैं, पर अगर श्री भगवान को हम तत्व से, सत्यता से जान लेंगे, तो फिर जब ये शरीर छोड़ेंगे दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। बाकी किसी भी और व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते रहें, हम इस भौतिक संसार से बंधे रहेंगे, इसे बाहर नहीं निकल सकते। पर हमारी हमारी जो चेतना है, हमारी बुद्धि है, इतनी खराब है कि हम भगवान को नहीं जानना चाहते, कोशिश भी नहीं करना चाहते कि है कौन। श्रीमद् भागवतम जब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से बोली, उस सभा में व्यासदेव भी हैं, नारद मुनि भी बैठे हैं, वशिष्ठ, वाल्मीकि, बड़े बड़े ऋषि भी आए थे और शुकदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम अगर आपको पता हो 12 स्कंद है, उसमें 18,000 श्लोक हैं। तो 12 स्कंद में से पहले शुरुआत शुकदेव गोस्वामी करते हैं भगवान के ऐश्वर्य से। शुरू में भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं बताए, भगवान का ऐश्वर्य, बीच में आके ब्रह्मांड की रचना कैसी है, समय की गणना कैसे होती है, इस सब के बारे में बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। उनके पास सिर्फ 7 दिन है और इसमें ये सब बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले भगवान का हमें ऐश्वर्य पता होना चाहिए, कृष्ण है कौन, उनको तत्व से जानना चाहिए। यह नहीं कि कृष्ण तो जी बस एक नटखट बालक थे, मक्खन चुराते थे, मटकी फोड़ते थे, ये सब करते थे। नहीं, रासलीला तो खैर बहुत आगे की बात है। कृष्ण सिर्फ ये नहीं है। जब पता होगा कृष्ण तत्व से कौन है, फिर हम उनकी लीलाओं को हम गलत नहीं समझेंगे, हम गलत तरीके से देख ही नहीं सकते उन लीलाओं को। क्योंकि हम कृष्ण को जानते नहीं है, इसलिए उनकी लीलाओं को भी नहीं समझ पाते। कृष्ण को जानना ही कितना मुश्किल है, आसान नहीं है। क्योंकि ये आज का जो श्लोक है इसी के ऊपर है, कृष्ण को समझना आसान है क्या? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनको जानना। अगर हम सोचें कि इस देश के जैसे प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनको जानना आसान है क्या? उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, नहीं जान सकते। तो भगवान को जानना कौन सा आसान होगा? इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और यही जानना सबसे अच्छा है। क्योंकि ये जब जान जाएंगे फिर वापस इस भौतिक संसार में जहां कष्ट ही कष्ट है फिर से नहीं आना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सब जानने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। एग्जाम है कल, तो कितनी पढ़ाई करते हैं आप। तो 10वीं 12वीं के सबके बच्चों के एग्जाम रिजल्ट आ रहे हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो जानने के लिए। तो भगवान को जानने के लिए भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार लोगों से कहो ना, अरे भाई आप आया करिए, भगवान मंदिर आया करिए, दर्शन करिए, थोड़ा सुनिए, कथा सुनिए, नाम जपिए। अरे नहीं, हम तो भगवान को जानते हैं, हमारे हृदय में है, सब है, ठीक है। अरे कोई आसान है? हम बस घर पे जी 2 मिनट हाथ जोड़ लेते हैं ऐसे। फिर उससे काम नहीं चलेगा। सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला, सिर्फ घर पे 2 मिनट हाथ जोड़ लिए वो हो गई छुट्टी। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इसी अध्याय में आगे बताते हैं। 4वां श्लोक है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा अहंकार इत्यन्य भिन्न प्रकृति रष्टधा। ये मेरी ही भिन्न 8 प्रकार की भिन्न शक्तियां हैं, भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी ही एनर्जी है, मेरी ही शक्तियां हैं। ये भगवान कह रहे हैं, ये कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने जहां भी लिखा है यूं लिखा, कृष्ण वाच, लिखा श्री भगवान वाच, ताकि हम समझे ये भगवान है कह रहे हैं। भगवान कौन है? जिनमें 6 के 6 ऐश्वर्य पूरी तरह से होते हैं, कोई साधारण आदमी नहीं कह रहा। और भगवान कह रहे हैं ये सब मेरी ही एनर्जीज है, मेरी ही शक्तियां हैं, जिसका कि हम जीव जो है दुरुपयोग करते हैं। हमने से किसने ये शरीर बनाया है? हमारे माता पिता ने बनाया? नहीं बनाया। ये शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार का बना है। इस संसार, भौतिक संसार में कोई भी चीज उठा के लीजिए, इन 6 ही चीजों से बनी है और इसमें से हमने कुछ भी नहीं बनाया। कोई एलिमेंट, कोई इंग्रेडिएंट इसका नहीं दिया हमने, ये सब भगवान का है। कल हमारी चर्चा हो रही थी किसी के साथ, हम उनसे कह रहे थे आप मंदिर आया करिए, थोड़ा जप कीजिए, गीता पढ़िए। बोले नहीं हम भाई मोरल रहना चाहते हैं, मोरालिटी पे ज्यादा विश्वास है. हमने कहा मोरालिटी की डेफिनेशन क्या है, मोरालिटी आप किस चीज को कहेंगे भाई, किसी के साथ बुरा ना करो, सबके साथ अच्छा करो, अच्छे रहें, ये है वो है. हमने कहा मोरालिटी की असली डेफिनेशन है कि चोरी ना करो. बोले हाँ ये भी मोरालिटी है. हमने कहा आप तो सबसे बड़े चोर हैं, कैसे कैसे. हमने कहा जो सामान भगवान का है अपनी सेवा में लगा रहे, भगवान की सेवा में लगाओ भाई. किसी और की चीज हम अपने पास रख लें तो चोरी हुई ना, हम उसको उसको इस्तेमाल करें तो चोरी हुई ना. और हम किसी की गाड़ी उठा के ले आए और चलाने लगे, चोरी है कि नहीं है. तो जब सारे तत्व तो सारे सब शक्तियां भगवान की हैं और हम अपनी सेवा में लगाए तो हम चोर हैं कि नहीं है, तो ये मोरालिटी हुई. भौतिक संसार में इसी को मोरालिटी कहते हैं. जैसे किसी ने बताया कि भगवान ने तो पृथ्वी बना के दी, भगवान ने पृथ्वी हम सबको दे दी, भाई तुम रहो पृथ्वी पर और यज्ञ करो, मेरे धाम को वापस आओ, देवताओं को भी प्रसन्न करो, उसे उनको प्रसन्न करके तुम भी खुश रहोगे. पर हमने क्या किया, पृथ्वी पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया, चाइना, अमेरिका, ये सब बना दिया. भगवान ने तो नहीं बना के भेजा था, हमने ये सब बना दिया. तो ये बनाना किस तरह, उसके बाद बॉर्डर बना दिया कि अब नहीं भाई आप अपने बॉर्डर में रहें, हम अपने में रहेंगे. तो ये सब बनाना किस तरह है कि अगर कुछ चोर जाएं, एक घर से सामान चोरी करें, चोरों ने एक घर से सामान लूटा, उसको लेके आए और फिर जंगल में आए और कहते हैं कि अब ईमानदारी से इसका बंटवारा करो. चोर हैं, चोरी करके लाए हैं और कहते हैं इसका बंटवारा जो है ईमानदारी से होना चाहिए. ये हमारी हालत है, भगवान की संपत्ति को हमने चुराया हुआ है और हम कहते हैं अब इसका ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए. ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तरांचल है, ये दिल्ली है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है. आप हमारे बॉर्डर में नहीं आइए, हम आपके बॉर्डर में नहीं जाएंगे. तो ये भगवान बता रहे हैं ये सब मेरा ही है. और फिर आत्मा भी क्या है, भगवान का ही अंश है. तो हमारा है क्या, हम एक 200-250 गज का प्लॉट ले लेते हैं, उस पर लिखवा देते हैं, रजिस्टर कराते हैं, प्रोप्राइटर ये सो एंड सो गुप्ता जी, रमेश शर्मा जी जो भी हैं प्रोप्राइटर हो गए. ये कहां से प्रोप्राइटर हो गए, आपके आने से पहले भी जगह थी, आपके जाने के बाद भी रहेगी. ये तो ट्रेन की टिकट ली है, यहां से बॉम्बे की टिकट ली, स्लीपर में मेरी रिजर्वेशन हो गई है. जितनी देर के लिए रिजर्वेशन होती देर ही रहेंगे ना, प्रोप्राइटर कहां से हो गया. उसके बाद जाते हुए ये थोड़ी है स्लीपर को उठा के घर ले जाएंगे, नहीं अब तो मेरा हो गया. तो उसी तरह प्लॉट भी कुछ ही समय के लिए हमारा रहना है. ये सब भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा में लगनी चाहिए. ये है इसको तत्व से जानना. और नहीं जानते, हम नहीं समझते, उस हिसाब से नहीं चलते, इसलिए भागवत में कहा गया है, और नहीं भगवत गीता में 3rd अध्याय में कहा है कि स्टेन है, स्टेन मतलब चोर है, वो व्यक्ति चोर है. और चोर की जो सजा होती है वो हमारी है. और यमदूत जो है हमें हर जन्म के अंत में पकड़ के ले जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर नरक में डालते हैं, फिर पृथ्वी पर हम किसी तरह आ जाते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर पकड़े जाएंगे, फिर फंसेंगे, फिर मारेंगे, फिर पीटेंगे, फिर वापस आएंगे. भगवान कहते हैं यार ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब छोड़ो ना, मेरे धाम को वापस आओ, आराम से रहो. पर हम इतने ढीठ हैं, हम कहते हैं हम नहीं सुधरेंगे, हमने नहीं जाना. थोड़ा सा जप कर लें, थोड़ी सी गीता पढ़ लें, थोड़ी सी कथा में आ जाएं, भगवान के दर्शन कर लें, भगवान को जान जाएंगे. हम कहते नहीं, हमने नहीं करना. और फिर इस्कॉन वाले जब जाते हैं प्रचार करने के लिए, हरिनाम करने के लिए, अरे ये लोग बहुत शोर मचाते हैं और दुखी करते हैं आके, पैसा मांगते हैं, दान मांगते हैं. भगवान की लक्ष्मी है, भगवान की सेवा के लिए मांग रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत है. और उसके बाद इतने फैसिलिटी दे रहे हैं, देखिए इतना अच्छा ऑडिटोरियम है, इतना बढ़िया मंदिर है, फैसिलिटीज दे रहे हैं, आप आइए, इतने अच्छी जगह में आइए, रहिए, कुछ समय बिताइए। पर हम हैं कि नहीं करेंगे। और यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्लोक चाहते हैं कि सब पढ़े, सब रिपीट करेंगे पीछे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चन माम वेति तत्वतः। तो भगवान कह रहे हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही है मुझे तत्व से जान पाता है। ये है भगवान भी कह रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि मेरे खाने के लिए कहाँ है, मेरे सोने के लिए क्या है, मेरी रक्षा किस तरह हो, भाई इसी चीज के आसपास भागते रहते हैं। ज्यादातर मनुष्य इसी चीज के लिए जिज्ञासा करते हैं, पैसा कहां, पैसा पैसा। इसलिए भागवतों में क्या कहा गया है, निद्रया ह्रियते नक्तम विवायन च व्या दिवा चारते है राजन कुटुंब भरणे नवा। कि जो कर्मी व्यक्ति है उसकी रात किस पे निकलती है, निद्रया ह्रियते नक्तम, या तो सोता है या विवायन च व्या, या वो संभोग करता है। दिवा चढ़ते हैं राजन, दिवा दिन में क्या करता है, या तो पैसा कमाने निकलेगा, चढ़ते हैं राजन कुटुंब भरण हुआ, या अपने परिवार का भरण पोषण के चक्कर में लगा रहेगा, और इसी तरह दिन भर रात भर निकलती जाती है, सारी जिंदगी इस तरह निकलती जाती है। दिन निकल जाता है पैसा कमाने में, परिवार का भरण पोषण करने में, रात निकल जाती है सोने में या संभोग करने में, और यही आनंद है। हम लोग आनंद है, खुश हैं। रात को अगर अच्छे से नींद आ जाए, सुबह उठते हैं, ओ आई फील बेटर, बहुत अच्छा लग रहा है। रात को लाइट नहीं गई, एसी चलता रहा, अच्छा ठंडा था, नींद आ गई। नहीं तो इतनी टेंशन है, वो भी नहीं आती आजकल तो। तो किसी दिन अच्छे से सो लें, बहुत अच्छा लग रहा है। यही चल रहा है सारी जिंदगी, और क्या कर रहे हैं हम। और कुटुंब भरण, कुटुंब मतलब पैसा कमाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी तीसरी जगह। दिल्ली में देखो तो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा ड्राइविंग करेंगे सुबह के समय, शाम के समय, क्या थोड़े से पैसे कमा के ले आएंगे। कलयुग के लिए बताया गया भागवत में 12वें स्कंद में, कलयुग की क्या खासियत, लक्षण क्या है कि व्यक्ति जो है अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर ले, उस संस्था में बहुत सफल हो गया। ये कलयुग का लक्षण है। पिछले युगों में होता था कि हाँ मैंने अपने परिवार को भगवान की भक्ति में लगाया तो सफल माना जाता था। अभी क्या है, उनका ठीक है, उनके लिए खर्चे के लिए हमने पैसे इकट्ठे कर लिए, चाहे ईमानदारी से किए या बेईमानी से किए, जैसे भी किए पैसे आ गए, बाई हुक और क्रुक मेक मनी। किसी भी तरह पैसा आना चाहिए घर में, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और वो समझते हैं कि हाँ हमने अपना कर्तव्य जो है पूरा कर दिया। इसी तरह जब हम प्रचार करते हैं, किसी से कहें अरे प्रभु जी थोड़ा जप कीजिए, मंदिर आया करिए, अरे नहीं बहुत टेंशन है, परिवार का भरण पोषण नहीं करना, हमारी ये ड्यूटी है, माता पिता की तो देखभाल करनी है। वैसे उनसे जाके पूछो तो माता पिता को तो फोन भी नहीं करते होंगे, पर जब भगवान की भक्ति के बारे में बात करो, अरे नहीं माता पिता की भी देखभाल करनी है, परिवार को भी देखना है। अरे क्या देख रहे हैं परिवार को। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान बहुत जरूरी है। शास्त्र क्या कहते हैं, किसी को भी माता पिता पति या गुरु या स्वजन रिश्तेदार बनने का अधिकार नहीं है, यदि अगर आप अपने पे जो निर्भर है उनको मुक्ति के मार्ग पर नहीं ले जा सकते, तो कोई अधिकार नहीं है। वरना बच्चे तो कुत्ते बिल्लियों के भी होते हैं, वो नहीं अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग में ले जा सकते। तो हमने और जानवरों में क्या फर्क रह गया अगर हम बच्चों को इस मार्ग पर नहीं ले जा रहे, क्या फर्क है? हम खुद ही नहीं जा रहे, अगला जन्म हमारा कहां होने वाला कुछ नहीं पता, किस योनि में किस, खैर आप लोग तो मंदिर आए हैं तो नरक तो नहीं कह सकता, पर किस लोक में जाएंगे कुछ नहीं पता। और फिर हम कहते हैं हमें अपने बच्चों का भरण पोषण करना है, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई? ऐसे भरण पोषण होता है? बच्चों को टीवी देखने के लिए फ्रीडम दे रखी है, इंटरनेट पे कुछ भी करो, खेलो कूदो कुछ भी करो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो क्या सीख रहे हैं? सब कुछ सिखाओ, हाँ बस साधु हो इसको भक्त नहीं बनने देना। IYF वाले चले जाए इस्कॉन यूथ फोरम के, नहीं 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 आप मेरे लड़के को छोड़ दो। उसको नहीं, अब साधु मत बना देना, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, नाक कट जाएगी। ये है हमारी मानसिकता। परिवार वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने हम क्या मुंह दिखाएंगे? हमारा लड़का क्या है, हेड शेव करके मंदिर बैठ गया, धोती कुर्ता पहनता है, क्या जरूरत कर रहा है? भगवान के मंदिर में है, भगवान का नाम भजन कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है, मांसाहार नहीं करता, शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, गलत काम नहीं करता, इसमें कुछ खराब है? पर नहीं, आजकल अगर ये सब नहीं करता तो सोशली तो डेड है उसके लिए, वो क्या हमारी बेकार है। उससे हमें क्या फायदा होने वाला है? ये नहीं समझते हमारे जो अल्टीमेट फायदा होने वाला वो उसी से होगा। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव जी ने कहा, नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद महाराज से, प्रहलाद महाराज ने कहा मेरे पिता ने बहुत बड़े अपराध किए हैं, मेरे प्रति भी आपके प्रति भी, आप कृपा करके इनको क्षमा कर दीजिए, इनको मुक्त कर दीजिए। नरसिंह देव भगवान ने कहा जिस परिवार में तुम जैसा पुत्र हुआ है भक्त, उस परिवार की 10 पिछले की पीढ़ियां, एक ये पीढ़ी और 10 आगे की आने वाली पीढ़ियां सारी मुक्त है। ये नरसिंह देव भगवान ने कहा। तो किसी परिवार में कोई एक भक्त आ जाए उस परिवार का तो मतलब वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता अपने आप ही। पर हम कहते नहीं, नहीं भक्त मत बन जाना बस। शराब पियो, सिगरेट पियो, जुआ खेलो, सब करो, वो सब अच्छा है, मंदिर मत चले। वहां गड़बड़ हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। ये है हमारी मानसिकता। हम खुद भी नहीं आना चाहते हो कि बच्चे को खासकर नहीं आने देना चाहते। ये तो हमारी लाइफ इंश्योरेंस है जी, आगे चल के इसी ने पैसा कमाना हमें देना है। कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। इसलिए भक्ति ही सर्वोच्च है, भक्ति के मार्ग में लगना ही सबसे अच्छा है। खुद भी लगना चाहिए और ये हमारी ड्यूटी है, हम अपने बच्चों को भी लगाएं। और आजकल तो उल्टा हो गया, बच्चे जो है माता पिता को लगा रहे हैं। बच्चे जो लग जाते हैं किसी तरह आ जाते हैं इस लाइन में, और फिर माता पिता कहते हैं आप भी जप किया कीजिए, माता पिता फिर भी नहीं नहीं, नहीं। माता पिता क्या कहते हैं, तेरे को बड़ा पता। कल का लड़का, कल का छोकरा हमारे सामने पैदा हुआ है, थोड़ा से एक दो किताबें क्या पढ़ गया, सोचता हमें तुझे सब आता है, फिर तो बड़ा ज्ञान आ गया। ये कहते हैं शुभदेव गोस्वामी ने जब भागवतम कथा की, 16 साल के थे सिर्फ, और उनके सामने उनके पिता व्यासदेव भी बैठे थे, उनके पिता के गुरु भी बैठे थे, सारे बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, वही 16 साल का बालक जो उनके सामने कथा कर रहा था, वो सब सुनने के लिए आए थे। आयु का इससे कुछ लेना देना नहीं, उम्र का इसको कुछ लेना देना नहीं है कि कोई कितनी तरक्की कर सकता है। और जिसको भी ज्ञान है, तत्व से ज्ञान है, यही 7.2 अगर दूसरे श्लोक में देखो भगवान कहते हैं, अब मैं तुमसे, फोन साइलेंट तो नहीं हो सकते, लगता है जैमर लगवाना पड़ेगा अगली बार यहां पे। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह है पूर्ण ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान। इसे जान लेने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं है, क्योंकि बाकी कुछ भी जानने की कोशिश करते रहे, जान भी जाएंगे, उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही है। नुकसान यह है कि हमारा इस भौतिक संसार में थोड़ा स्टे है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और ये अगर जान जाएंगे भगवान के बारे में, अगर जान जाएंगे इससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी अभी श्रद्धा नहीं है भगवान में, भगवान के कथन में, इसलिए थोड़ा डाउट रहता है कि बाकी जाएंगे भी भगवान का धाम, किसने देखा है। वैसे है पूरी श्रद्धा की बात। अब सब लोग ट्रेन में ट्रेवल तो करते होंगे, रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं सारे, टिकट लेते हैं। कितने लोग हैं टिकट लेने के बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और रेलगाड़ी के पहले इंजन में जाके देखें भाई सब तेल वेल है कि नहीं है, ड्राइवर से पूछे तुम तेरे को रास्ता पता क्या नहीं कि पता लगा बॉम्बे की ट्रेन है तो अमृतसर ले जाए, कोई जाके पूछता है? सारे डिब्बों के सारे पहिए चेक करते हैं सब ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कोई नहीं करता। टिकट लेते हैं, अपनी बोगी देखते हैं, स्लीपर देखते हैं, जाके लेट जाते हैं, सो जाते हैं। फेथ है, श्रद्धा है कि पहुंचा देगी ट्रेन, एक्सीडेंट नहीं होगा। पर यही चीज भगवान कहते हैं तो श्रद्धा नहीं है, फिर प्रश्न करते अरे ऐसा कैसे हो सकता। कितने प्रश्न करते हैं, अरे नहीं ऐसा संभव है, हो ही नहीं सकता, किसने देखा जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां जाके क्या होगा हमें क्या पता, वो हम क्या करेंगे, और फिर नाम जप करने से ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता, आप झूठ बोलते हो। उसमें श्रद्धा नहीं है, एक ट्रेन की जरा सी टिकट है उसमें श्रद्धा है, उसे किसी से प्रश्न नहीं करते ये पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं तो ये है हमारी चेतना क्योंकि हम भगवान के बारे में जानना नहीं चाहते, इसलिए सारी समस्या है। और इसलिए वेदांत सूत्र की शुरुआत इसी से होती है, कहते हैं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब जो है हमें मनुष्य शरीर मिल गया है किसी तरह। और इस श्लोक में भी देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, 7.3 जो है, मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यत्ते सिद्ध है। भगवान ये नहीं कहते जीवा नाम सहस्रेशु, बाकी जीव नहीं समझ सकते इस चीज को, सिर्फ मनुष्य ही समझ सकते हैं। तो मनुष्य नाम सहस्र, हजारों हजार मनुष्य में से कोई एक है, जानवरों के बारे में नहीं बोला, पेड़ों के बारे में नहीं बोला, पक्षियों के बारे में नहीं बोला, सिर्फ मनुष्य के बारे में बोला है। तो इसका एक और अर्थ है, अगर जो मनुष्य भगवान के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते तो वो कौन है, तो किसके बराबर है। सीधी सी बात, भगवान कह रहे हैं ना मनुष्य में से कोई हजार में से एक है जो मेरे सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो जो नहीं प्राप्त करने की कोशिश करता तो वो कौन है, तो हमने किस कैटेगरी में आना है और ये हमारे ऊपर है। और जो नहीं प्राप्त करने की कोशिश करेगा, जो पशु जीवन ही व्यतीत करेगा, पशुओं के समान ही रहेगा, उसको अगला जन्म कैसा मिलने वाला है। एक बार एक फ्रांस में एक व्यक्ति था, तो प्रभा जी वहां प्रवचन कर रहे थे, तो प्रभा जी ने कहा कि अगला जन्म फिर कुत्ते बिल्लियों का मिल जाएगा अगर भक्ति में नहीं लगेंगे। तो व्यक्ति कहता उसमें क्या खराबी है क्योंकि बाहर के देशों में, अब यहां भी भारत में भी ये चलन आ गया है, वैसे कुत्तों को ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं, गाड़ी में उनके लिए अलग जगह सीट रहती है, उनका कमरा भी घर में अलग रहता है, एसी लगा रहता है उसमें। कई जगह तो होता है परिवार में एक कुत्ता होता है, तो परिवार के सदस्यों में लड़ाई हो जाती है कि रात को किसके पास सोएगा, किसके बेड पर आकर सोएगा, और जिसके बेड पर सोएगा वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है कि आज जो है टॉमी जो है आज हमारे साथ सोया है, देखो उसको हमारे साथ कितना प्रेम है, क्या लाइफ है। भारत में भी ऐसा चलन है, अरे वो पता यहां तो अभी नहीं है, एक चीज बाहर के देशों में तो है। बाहर क्या करते हैं, कुत्ते को सुबह सुबह घुमाने के लिए लेके जाते हैं क्योंकि उसको भी कुछ तो एक्सरसाइज चाहिए, और घूमने जाएगा सुबह सुबह तो शौच भी करेगा कहीं, तो मल त्याग करेगा ही करेगा। और बाहर के देशों में तो ऐसा है, अगर आपके कुत्ते ने कहीं मल त्याग कर दिया और आपने उसको साफ नहीं किया तो आप पे फाइन लगेगा तो कुत्ते का मालिक चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो वो अपने साथ जो है प्लास्टिक की एक थैली लेके चलता है तो ये प्रभुपाद जी ने कहा, इफ यू आर नॉट सर्विंग गॉड यू हैव टू सर्व डॉग। अब ये हमारे ऊपर है, क्या करना चाहते, पूरा हमारे ऊपर है। उसका मल उठा के फिर अपनी जेब में रखता है क्योंकि फेंक भी नहीं सकता ऐसे और फिर घर आएगा तो जहां भी डस्टबिन होगा फिर उसमें फेंकेगा, क्योंकि और फेंक दिया तो किसी ने देख लिया, पुलिस ने देख लिया तो चलान करेगी। और बड़े खुश होते हैं, देखो हमने उसकी इस तरह सेवा की है। ये है सभ्यता। गाय के गोबर को नहीं उठाएंगे, कुत्ते के मल को उठाएंगे। शास्त्र में तो गाय का गोबर बहुत पवित्र माना गया, बताया कि लक्ष्मी देवी का वास होता है गाय के गोबर में। जहां गाय का गोबर का लेप किया जाता है जिस घर में, वहां लक्ष्मी जी रहती हैं। कुत्ते के मल के बारे में ऐसा नहीं बोला, मनुष्य के मल के बारे में नहीं ऐसा बोला गया, गाय के गोबर के लिए बोलता था। पर लोगों को नहीं पता, शास्त्र नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते, और बोल देते हैं ये तो क्या है, ये सब मिथोलॉजी है काल्पनिक चीजें हैं। वेद व्यास जी को और कोई काम नहीं रह गया था स्टोरी नॉवल लिखने के अलावा, जैसे वो जासूसी उपन्यास आते हैं ना, कि ये भी वैसी ही एक चीज है, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं ये जो पढ़ता है वो मेरे को जान लेता है, वो मेरे को जानता है, उसके बाद जानने योग्य और कुछ नहीं रह जाता। और उसके बाद जो व्यक्ति जो है वो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील, वो अपने सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। सिद्धि क्या है मनुष्यों के लिए, हम किस तरह भगवान के धाम जाएं, भगवान को जानने की कोशिश करें, यही सिद्धि है, यही परम अवस्था है, यही परफेक्शन है। परफेक्शन और कुछ नहीं है कि हम ज्यादा सो लिए या ज्यादा खा लिए या ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया, वो परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन ये है हमने भगवान को जाना, हम भगवान की सेवा में हैं, हम अपने आप को समझे हैं कि हम कौन हैं, ये परफेक्शन है। बाकी सारी चीजें इम्परफेक्ट है, कुछ भी परफेक्शन नहीं है। चाहे हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लें या बड़े बड़े रॉकेट बना के चाहे मार्स पे पहुंच जाए, चांद पे पहुंच जाए, वो परफेक्शन नहीं है, क्योंकि जहां भी पहुंच जाए, ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए, वहां से भी वापस आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो इसी पृथ्वी पर वापस आना पड़ेगा, तो वो परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन वो है जहां से फिर वापस ना आना पड़े, तो वो समझने के लिए वो जानने के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, उसके बिना संभव नहीं है। क्योंकि ये श्लोक सातवें अध्याय के शुरुआत में आया है, तो अभी जैसे मैंने कहा कर्मयोग का थोड़ा सा इसमें ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी भगवान तो कहते हैं कोई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, उनमें से कोई विरला ही मुझे वास्तव में जान पाता है, मतलब वो तो पूरी तरह से परफेक्ट हो पाता है, तो हम प्रयत्न क्यों करें, इतना मुश्किल है भाई लाखों लाखों में से कोई एक जाएगा ना, तो हम क्या क्यों ट्राई क्यों करें। ये इसलिए है कि कर्म योग और ज्ञान योग जो है हमारे प्रयत्न पर डिपेंड करता है, उसका जो रिजल्ट है हमारे प्रयत्न हमारे एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। भक्ति योग जो है उसका रिजल्ट जो है भगवान की कृपा पर डिपेंड करता है। इसलिए आगे के श्लोक में जब जाएंगे, आगे के अध्याय में जब जाएंगे तो देखेंगे भगवान कहते हैं अन्य चिंतन तुम नाम ये जन परिपाषते तेषाम नित्य पीता नाम योग क्षेम महाम्यम। जो मेरी पूरी तरह से भक्ति अनन्य भक्ति करता है उसके जीवन में जो कमी है उसको मैं पूरा करता हूं, जो है उसके पास उसकी रक्षा मैं करता हूं। ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे, उसको बुद्धि योग मैं देता हूं जिसे वो मेरे पास आ पाता है, वो भक्ति है। ये अभी भी थोड़ा सा कर्मयोग का इसमें ओवर रहता है। तो भक्ति जो है वो सर्वोच्च, क्योंकि उसमें भगवान की गुरु की गुरु परंपरा की सब पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा मिली रहती है, उससे हम जल्दी प्रगति कर पाते हैं। कर्म और ज्ञान में हम प्रगति नहीं कर सकते कृपा से, उसमें हम जितना प्रयत्न करेंगे उससे से प्रगति होती है। तो असली जो चीज है वो भक्ति है, और भक्ति में भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से और भक्तों की कृपा से ही हम आगे बढ़ते हैं। वो उनकी कृपा पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे लोगों से कहूं ना कि प्रभु जी आप मंदिर आया करिए, अरे नहीं भगवान की कृपा नहीं है, कृपा हुई तो आएंगे, सारे एक्सक्यूजेस हम सुन चुके हैं वैसे। इसमें कोई बहाना है बचा नहीं है जो अब तक ना सुना हो। ये बहाना तो बहुत मेजर है, भगवान की कृपा होगी तो आ जाएंगे। नहीं, सुबह दुकान या जॉब पे जाते हुए कोई कहता है भगवान की कृपा होगी तो आज दुकान खुलेगी या नौकरी पे जाऊंगा, कोई कहता है? कोई माता जी कहती है आज भगवान की कृपा होगी तो खाना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कोई नहीं कहता। नहीं, बच्चे कहे डैडी आज भगवान की कृपा होगी तो स्कूल जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। भगवान की तो पता नहीं, डैडी की कृपा उसे मिलने वाली। तब कोई कृपा नहीं याद आती, तब अपने एफर्ट याद आता है। नहीं करना है, ये ड्यूटी है, मंदिर आना भी ड्यूटी है। भगवान की कृपा ही तो है, हमें शरीर ठीक है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, ये कृपा ही तो है। वो इसका सही इस्तेमाल है अगर भगवान की सेवा में करें, भगवान के मंदिर आके दर्शन करें, श्रवण करें, कीर्तन करें, यही तो हमें कृपा का सही उपयोग है, नहीं तो पूरा गलत है। तो कृपा का मतलब है कर और पा, हम जब करते हैं तो फिर उसका फल पाते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। तो ये है कृपा, हमें नाम लेने की जो एबिलिटी है भगवान ने दी है, तो भगवान का नाम लेना चाहिए। जीभ जो है भगवान ने दी है बोलने के लिए और खाने के लिए, स्वाद लेने के लिए, पर वे हमारे ऊपर है हम क्या बोल रहे हैं। भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, या किसी की निंदा कर रहे हैं, या बाकी चीजों में जीभ को लगा रखे हैं। खाने की एबिलिटी दी है तो प्रसाद खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। प्रसाद खाएंगे शुद्ध होंगे, भगवान के धाम जाएंगे, नहीं खाएंगे कुछ और खाएंगे, अशुद्ध होंगे यहीं रहेंगे। पूरी तरह से हम पे है, इसमें भगवान की कृपा नहीं चाहिए। इसमें हमारी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, चेतना ठीक होनी चाहिए, ताकि हम ठीक कार्य करें। और वो समझने के लिए, वो चेतना ठीक रखने के लिए हमें भक्तों के संग में आना बहुत जरूरी है, तभी हम सीख पाएंगे। और यही सीखने के लिए मनुष्य योनि है, और यही सिद्धि है मनुष्य योनि की जो भगवान ने इस श्लोक में बताया है। हालांकि श्लोक का तात्पर्य तो बहुत लंबा है, तो पूरा तात्पर्य तो नहीं पढ़ेंगे। आप सबसे अनुरोध तो यही है कि भाई पढ़ के आया करिए, पिछला भी अगला भी। क्योंकि जब क्लास में भी जाते हैं, किसी भी स्कूल में क्लास में जाते हैं, तो कोशिश यही होती है कि टीचर ने जो चैप्टर पढ़ाना है वो पढ़ के जाए ताकि अच्छे से समझ में आए। तो ये भी अगर पढ़ के आए तो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझेंगे तो भगवान को ठीक से जान पाएंगे, भगवान को ठीक से जान पाएंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। तो यही विराम देते हैं, किसी को कोई प्रश्न है या कमेंट कर सकता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं? पानी, भगवान के छह ऐश्वर्य क्या है? इसी तात्पर्य प्रभा जी ने लिखा है, सर्वशक्तिमान ऐश्वर्य, पूरा ऐश्वर्य, संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य। मतलब उनकी उनके वो सारी संपत्ति है, यश है, बल है, ज्ञान है, वैराग्य है, सौंदर्य है, पूरी मात्रा में। ये भी नहीं कि सबसे ज्यादा, नहीं, पूरी मात्रा में उनके पास है, बाकी हम सबके पास कुछ अंश है उस चीज का। संपत्ति, यश, बल, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य, ये छह ऐश्वर्य। जिसके पास ये छह ऐश्वर्य पूरी तरह से है वही भगवान है। और आचार्य ने जो विश्लेषण किया है वो यही किया है कि कृष्ण के पास ही ये पूरी तरह से है, तो कृष्ण ही भगवान। हालांकि यहां लिखा गया ना कि कोई मेरे को एक विरला ही वास्तव में जान पाता है, अपनी कोशिश से हम उनको नहीं जान पाएंगे। जिसके पास ये सारे ऐश्वर्यों को कैसे जान सकते हैं? भगवान की कृपा से हम उनको जान सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक, जितना हम सरेंडर हैं उतना जान सकते हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है, या यस माधव? क्या करना चाहते हैं? सी, भक्ति के मार्ग में अगर कोई ये बस सोच ही ले कि मैंने बढ़ना है, भगवान तो इतने दयालु हैं, उसको भी भक्ति मान लेते हैं। जैसे एक जगह शायद प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि आज से मैंने जप शुरू करना है, अभी शुरू नहीं किया है, सोचता है आज से मैंने जप शुरू करना है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भगवान उसको भी भक्ति मान लेते हैं कि इसने कम से कम सोचा तो सही, चलो इस आगे बढ़ा। तो भक्ति मार्ग इसलिए इजी भी है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कि हमारे सोच से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और जहां हमारी इच्छा है और दृढ़ इच्छा है आगे बढ़ने की, तो भगवान फिर रास्ता बना देंगे उसके लिए। तो इच्छा हमारी होनी चाहिए। कई बार हमारी टेस्टिंग भी होगी, कई बार क्या हटाएंगे होगी कि इच्छा कैसी है, बढ़ना भी चाहता है या ऐसे दिखावा हो रहा है। तो अगर हमारी दृढ़ इच्छा है, प्रबल इच्छा है, तो भगवान रास्ता बनाएंगे। हरे हरे। और कोई प्रश्न? तो प्रश्न, हाँ जी माता जी। थैंक यू। नहीं, वो जरूरी है, बिल्कुल है। तो इसलिए बैलेंस बना के चलना चाहिए ना भाई। एक है शरीर की ड्यूटीज और एक है आत्मा की ड्यूटी। शरीर की ड्यूटी के लिए तो हम बहुत समय लगाते हैं, पर आत्मा की ड्यूटी भी तो है, वो भी तो करना है। तो बैलेंस देखना चाहिए कैसे बना के चलना। इग्नोर नहीं कर सकते, पर उसको अब देखना कितनी प्रायोरिटी देनी है। पर दूसरी ओर अगर एक दूसरे एंगल से सोचें, हाथी तो कोई जॉब नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, और वो रोज तो बहुत ज्यादा खाता है, हमसे तो बहुत ज्यादा ही खाता है। हम तो थोड़ा सा खा लेते हैं, हमारी तो न्यूट्रिशनिस्ट है, वो कहती है डाइटिंग करो बाबा, घी नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो हाथी तो इतना खाता है, वो कोई जॉब भी नहीं करता, उसको कौन देता खाने के लिए? तो भगवान ने जब जीव को बनाया है, जन्म दिया, तो उसके खाने का उसके पूरा इंतजाम करके भेजते हैं। पर तो जिस जो भगवान के एकदम निकट आ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं मनुष्य योनि में, तो उनके लिए अरेंजमेंट नहीं किया होगा क्या? किया तो है ही है ना। और वो दिक्कत ये है, हमारी नीड एक चीज है, ग्रीड एक चीज है। अब ग्रीड का तो कोई अंत है नहीं। अब उस चक्कर में व्यक्ति जो है उसको 24 घंटे भी कम है काम करने, तो कहते 24 से भी ज्यादा होते तो मैं ज्यादा पैसा कमा सकता था, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए हाँ, अपनी निर्वाह के लिए, अपनी भरण मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, कमाना चाहिए, पर बैलेंस बना के कि स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ना है और इसमें ये भी रखना है। हमारे कई भक्त हैं इसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, जो अपना परिवार भी चलाते हैं, बिजनेस भी है, मंदिर भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। सुषमा माता जी हैं, अमित प्रभु हैं, और भी माता जी प्रभु जी बहुत सारे हैं यहाँ पे। नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा ऐसा करिए, क्योंकि कल को आपके घर में लड़ाई होगी, सारा दोष मेरे पे आएगा, भाई किसने बोला था ये सब करने के लिए। हरेक का आगे बढ़ने का तरीका अलग अलग है। अब ब्रह्मचारी के लिए है, वो छोड़ के आ जाए मंदिर में, ठीक है, जो गृहस्थ हैं उनके लिए नहीं है। पर फिर भी उसके बाद भी हमें देखना है ना, बैलेंस कैसे बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को पूरी खुली छूट दे दें कि आप जो भी चीज चाहे करो, अभी आपके पास बहुत समय है, फिर देखेंगे कभी लग पाए भक्तियों के, नहीं, वो भी नहीं। बचपन से ही उनको ये ज्ञान भी देना चाहिए ना, शिक्षा देनी चाहिए कि किस तरह भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति में लगना है। ये लोग समझ रहे ये बैकवर्ड चीजें हैं, इससे हमारा बच्चा बैकवर्ड हो जाएगा, सोसाइटी में कैसे कम्पीट करेगा, ऐसा नहीं है। हमारे सोसाइटी में बहुत बच्चे हैं और भक्ति में भी आगे हैं, करिकुलम में, स्टडीज में भी आगे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे हैं। तो अगर बैलेंस बनाएंगे, भगवान हर तरीके से हेल्प करेंगे। तो गृहस्थ लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास लाइफ में हम एक तरफ जा सकते हैं ज्यादा, तो गृहस्थ लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यस माता जी पीछे, वैसे हमारे मंदिर में भी समर कैंप चल रहा है, आज से ही शुरू हुआ है, तो सैसनेटर पर खड़े हैं, वो इंचार्ज हैं इसके समर कैंप के, तो वो बता सकते हैं। सी, अगर आपको सोने की थाली में खूब अच्छे अच्छे पकवान दिए गए हैं और उसमें आपको बताया जाए कि इसमें हर एक में एक एक ड्रॉप जो है पॉइजन का मिला हुआ है, आप खाओगे, बच्चे को खिलाओगे? तो फिर भाई हम नहीं चाहते बच्चा पिछड़ा रहे, पर जहां हम रैट रेस में पड़ गए तो अंत में रैट ही रहेंगे। रैट रेस का तो अंत यही होता है, रैट ही रहते हैं अंत में, चाहे जीत भी जाए हार जाए रहेंगे चूहा। तो इसमें कोई गलत नहीं है, अगर आप इसका भजन गाने की इच्छा है, उसको भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, और जहां समय आएगा वो अपने आप दूसरी तरफ भी, मैं ये नहीं कहता एक ही तरफ पढ़ो, मैं कहता हूँ बैलेंस बना के चलो। पर जो सोसाइटी, सो कॉल्ड सोसाइटी जिसको कहते हैं, उसमें आजकल यही हो गया है कि ये तो ऐसे पिछड़े लोगों का काम है, फॉरवर्ड लोग जो होते हैं ये सब नहीं करते। ऐसा नहीं है, हमारी संस्था के कई बच्चे हैं, बहुत हैं, जिन्होंने तो 19 साल की उम्र में ही पीएचडी भी कर ली थी। एक दो ऐसे भी उदाहरण हैं, उतनी स्टडीज में भी आगे हैं और भक्ति में भी आगे हैं। तो हमें ऐसा बनाना है, उनको दोनों ज्ञान देने हैं। तो उसी से उनका उनका जो जो प्रोग्रेस है वो ठीक रहेगी, नहीं तो गड़बड़ है। शुरू में हमको छोड़ ज्ञान दें और सोचें कि बाद में आके भक्ति में लग जाएगा, और जबकि घर में भी हम प्रैक्टिस ना करें, उसकी इंपॉर्टेंस भी ना समझें, तो विष देने के बराबर है। तो वो नहीं अच्छा है, वो एकदम खराब है। प्रहलाद महाराज ने यही कहा, 5 साल की आयु से ही बच्चों को जो है भक्ति में लगाना चाहिए। तो यही हम सब की कोशिश होती है, बच्चों को, यंगस्टर्स को, हमारी तो खैर संस्था में सारे ही आते हैं, सबको भक्ति में लगाया जाए। पर अगर बचपन से शुरू करेंगे तो आगे चल के भी वो उसी लाइन में रहेंगे। ठीक, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न नहीं तो वेदांत प्रभु कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे। हरे कृष्ण।